हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनामिका उसे देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं पहले वाली झलक आखिर कहाँ खो गई। फिलहाल अभी सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, अरे मल्होत्रा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आवाज़ सुनते ही दादाजी ने मुड़कर देखा, पीछे कोई और नहीं बल्कि बलबीर राणा खड़े थे। उन्हें देखते ही दादाजी के चेहरे पर खुशी साफ छलक उठी। वो तुरंत उठे और आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। अरे भाई, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है, आओ ना हमारे साथ बैठो, ज्वाइन करो। ये कहकर दादाजी उन्हें अपने टेबल तक ले आए और परिवार से मिलवाने लगे। एक एक करके सभी का परिचय कराया गया। जब बारी झलक की आई तो दादाजी ने कहा, और ये है मेरी पोती झलक। झलक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो अंकल। बलबीर राणा ने जैसे ही उसका नाम सुना उनके चेहरे पर खास चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह मल्होत्रा, तेरा परिवार तो बड़ा प्यारा है और तेरी बेटियां तो बहुत ही सोनी हैं यार। इतनी खूबसूरत लड़कियां मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, क्या बात है। ये सुनकर झलक हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। दादाजी ने चुपके से झलक की तरफ देखा और फिर बलबीर राणा की ओर आंख मार दी। ये देख अनामिका मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। असल में अनामिका को सब पता था, उसने दादाजी और आरव की बातचीत सुन ली थी। दादाजी बहुत जल्द झलक को आदित्य की जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, और अगर झलक और आदित्य एक हो जाते तो झलक की जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी होती। आदित्य पर उन्हें पूरा भरोसा था, आखिर वो दादाजी के बचपन के दोस्त बलबीर राणा का पोता था। जब बलबीर राणा ने आदित्य के मुंह से झलक मल्होत्रा का नाम सुना था तो उन्होंने सीधे दादाजी को मैसेज करके पूरी जानकारी दी थी। फिर दोनों बुजुर्गों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि एक कैजुअल मुलाकात करवाई जाए। उसी प्लान के तहत ये लंच रखा गया था। दादाजी की एक्टिंग देखकर अनामिका का मन कर रहा था कि उठकर उन्हें गले लगा ले और कहे, दादाजी आप तो एक्टिंग में सबके उस्ताद निकले, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर चुप बैठी रही। झलक ने किसी पर खास ध्यान नहीं दिया, वो बस चुपचाप खाना खा रही थी। इस वक्त आरव, अनामिका और दिग्विजय सिंह जी को छोड़कर बाकी सभी लोग इस बात से अनजान थे कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद बलबीर राणा खुद झलक के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए और दादाजी को देखते हुए बोले, अरे उससे क्या बात करूं, मैं तो यहाँ आया हूँ तो अपनी बेटियों से ही बातें करूंगा, ढेर सारी बातें। फिर वो सीधे झलक की तरफ मुड़े, बेटा आप करती क्या हो, क्या क्या पसंद है आपको? इस तरह अचानक सवाल सुनकर झलक थोड़ा कन्फ्यूज हो गई। उसने एक पल के लिए दादाजी की तरफ देखा। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ आंखों से इशारा किया, बात कर लो। झलक ने संयत स्वर में कहा, मैं इस वक्त अपनी इंडस्ट्री संभाल रही हूँ अंकल, मैं वहाँ CEO हूँ। ये सुनकर बलबीर राणा गर्व से बोले, अरे वाह, जानते हो हमारा आदित्य भी पूरी राणा इंडस्ट्री संभाल रहा है, और सुना है तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो। झलक पहले तो समझी नहीं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही राणा इंडस्ट्री का नाम आया उसके दिमाग में आदित्य का चेहरा उभर आया। उसने सीधा जवाब दिया, जी हाँ मैं आदित्य राणा के साथ ही काम कर रही हूँ। बलबीर राणा खुशी से खिल उठे, बहुत अच्छी बात है बेटा, वो थोड़ा इमोशनल है मेरा बच्चा, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, और अगर उसने तुम्हें कभी परेशान किया ना तो मुझे बता देना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज उठी, लेकिन झलक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। दादाजी बार बार कोशिश कर रहे थे कि बात थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन झलक हर सवाल का छोटा और सीमित जवाब दे रही थी। न वो खुल रही थी, न किसी को मौका दे रही थी कि बात गहराई तक जाए। आखिर दादाजी ने हल्का सा माथा पकड़ लिया। उनका इरादा था कि पहले बलबीर राणा के जरिए झलक को सहज किया जाए, ताकि धीरे धीरे आदित्य और उसके रिश्ते की नींव रखी जा सके। अगर सीधे आदित्य का नाम लेकर रिश्ता प्रस्ताव रखते तो झलक पूरी तरह भड़क सकती थी, और उसके गुस्से का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह था। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना था, धीरे धीरे बिना शक पैदा किए। लेकिन फिलहाल झलक की ठंडी और सख्त प्रतिक्रिया देखकर साफ लग रहा था उसके दिल तक पहुंचना अभी भी उतना आसान नहीं था। इसीलिए दादाजी संयम से काम लेना चाहते थे, वो झलक को धीरे धीरे परिवार के साथ फिर से इन्वॉल्व करना चाहते थे। फिलहाल बलबीर जी पूरी सिचुएशन समझ रहे थे, लेकिन उन्हें झलक के अतीत के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया था। बस इतना कहा गया था कि कुछ गहरे जख्मों की वजह से वो अब किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करती। बलबीर राणा, जो दिग्विजय सिंह जी के बचपन के दोस्त थे, उनकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ चुके थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हमें तो तुम्हारी पोती बहुत पसंद आई, देखना हम अपने बेटे को इसके पीछे लगा देंगे और बहुत जल्दी हमारे घर की बहू बनेगी, और भले ही इसका पास्ट कुछ भी रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना पता है कि ये बच्ची हमेशा खुश रहनी चाहिए। ये कहकर बलबीर जी ने बड़े ही अच्छे माहौल में सभी से मुलाकात की और फिर वहां से विदा ले ली। झलक ने इस पूरी बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस शांत रही। फिर दादाजी की ओर देखकर बोली, मेरी मीटिंग है, आप जानते हैं कि हमें अपने काम को आगे कैसे लेकर जाना है, इसलिए मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं निकलती हूँ, आदित्य बाहर ही है, वही मुझे पिक करने आया है, आप लोग गाड़ी लेकर आ जाइए। झलक की बात सुनकर दादाजी ने बस सिर हिला दिया। झलक के जाते ही दादाजी ने स्नेहा, रोहन और सौरभ जी को बलबीर जी के बारे में सारी सच्चाई बता दी। क्योंकि रोहन और सौरभ को वो अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। ये सुनकर स्नेहा जी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो बोली, पिताजी क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा? झलक के लिए अब किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा जख्म खा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी अपनी जिंदगी में स्वीकार करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी बेटी को भी खो दें। आरस तुरंत बोले, देखना बहुत जल्दी झलक की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ बदला लेने की नहीं है, अपने दुश्मनों से बदला वो एक पल में ले सकती है, उन्हें एक पल में बर्बाद कर सकती है, लेकिन उसका इरादा उन्हें एक झटके में खत्म करने का नहीं बल्कि तिल तिल करके तोड़ने का है। पर इन सबके चक्कर में हम झलक को नहीं भूल सकते। अगर वो बदले की आग में जलती रही तो उसके अंदर की वो प्यारी सी नन्ही सी झलक कहीं खो जाएगी, मर जाएगी। उससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए, हमें उसकी जिंदगी में एक बार फिर प्यार लाना होगा, कोशिश तो करनी ही होगी। घर के सभी लोगों ने कहीं न कहीं इस बात पर हामी भर दी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि जितना हो सकेगा वे झलक की जिंदगी में प्यार और अपनापन वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर झलक की जिंदगी में प्यार रहेगा तो शायद बाकी सब भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तभी दादाजी ने अनामिका की ओर देखा और कहा, बेटा एक बड़ी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। हम आदित्य राणा को भले ही जानते हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में खुद भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। हम नहीं चाहते कि इस बार हमारी पोती की जिंदगी में कोई भी गलत इंसान आए। हम हर तरह से श्योर होना चाहते हैं, भले ही आदित्य हमारी नजरों में एकदम हीरा हो, लेकिन झलक के फ्यूचर को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए तुम्हें अपने तरीके से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, उसके दोस्तों से, उसके काम से, उसके नेचर से सब कुछ जानना होगा। हमें हर एंगल से क्लियर फैक्ट चाहिए।
अनामिका तुरंत बोली, दादाजी आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं अभी से मिशन मोड ऑन कर चुकी हूँ। आप देखना, मैं आदित्य राणा की पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख दूंगी, और वैसे भी वो पहली नज़र में मुझे पसंद आ गया था, झलक भी उसे पसंद कर लेगी, फिर तो देखना जिंदगी में कितना मज़ा आएगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों, उसने जितना दुख देखा है उसे मुझसे बेहतर कौन जानता है। उसकी आवाज़ में सच्चा अपनापन था। दादाजी ने फिर स्नेहा जी की ओर देखते हुए कहा, बेटा सबसे बड़ा काम आपका है, आपको धीरे धीरे झलक की बंद हो चुकी भावनाओं को फिर से जगाना होगा, उसे फिर से जिंदगी की तरफ मोड़ना होगा। इस वक्त वो एक पत्थर बन चुकी है, बेजान पत्थर। उसने अपने सारे इमोशंस दिल के सबसे अंधेरे कोने में दफन कर दिए हैं, जहां किसी को पहुंचने तक नहीं देना चाहती। स्नेहा जी ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें पता है कि हमारी बेटी को किस तरह से धीरे धीरे जिंदगी की ओर वापस लाना है। उधर जैसे ही झलक होटल से बाहर निकली, सामने आदित्य अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। वो कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें सीधे झलक पर टिक गईं और अगले ही पल दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं।